What does motion sound like? With Kizikans free shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
Bol jaykara bol mere Shri Guru Maharaj ki jai. Shri Shri 108 Shri Ditya Parshay Ji Swami Savrupanand Ji ka jeevan. Parvachan 33. दिल सागर के समान है, इसमें बुलबुले जीव के संकल्प विकल्प और विचार है। ये विचार ही अंत समय यमदूत बन जाते हैं। ये जिस मनुष्य ने संकल्प विकल्प समेट लिए, मानो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इन विचारों को अपने जीवन काल में ही समेटना है। यदि विचार साथ चले गए तो वह वासना का तूफान खड़ा कर देते हैं। मृत्यु के पश्चात ये और भी बढ़ जाते हैं। वासना अनुसार ही दूसरा जन्म मिलता है, इसलिए इस जन्म में ही वासना का अंत करना चाहिए। प्रवचन 34। शिव द्रोही अथवा शिव जी में श्रद्धा ना रखने वाला जो है, जिसका शिव नेत्र ना खुला है, जिसका तीसरा नेत्र बंद है, वह कदापि अपने इष्ट देव को, आत्म देव को नहीं मिल सकता, अर्थात उनका भगत नहीं कहला सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने सद्गुरु की श्रद्धा भाव से सेवा करके सहज समाधि के साधन को अपनाया। तब उन्होंने अपने अंदर सर्वव्यापी प्रभु राम को पाया। बिना सहज समाधि के जीव आत्म दर्शन नहीं कर सकता। इस युक्ति का ज्ञान साधक को पूर्ण सद्गुरु द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। एक दिन प्रवचनों में फरमाया, पिंड देश और ब्रह्मांड देश क्या है? मानो कुरुक्षेत्र की रणभूमि है, जहाँ एक और पिंड देश है, 10 इंद्रियों और 11 मन, 11वां मन, ये 11 औषधि सेना दुर्योधन की स्थित है। जबकि दूसरी और ब्रह्मांड देश में आंखों के मध्य देश से आरंभ होकर सत्य लोक तक 7 स्थान है। यही पांडवों की 7 अश्वनी सेना है। अब जीव का धर्म है कि वह अपने को धनुधारी पांडव पुत्र अर्जुन बना ले और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज को सारथी कर ले, अपनी सुरती रूपी रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ठहरा कर त्रिकुटी में सतगुरु देव जी महाराज का ध्यान जमावे। तभी कौरव दल रूपी अनंत विषय वासनाओं का अंत होगा। सतगुरु की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद के बिना युद्ध में विजय प्राप्त ना होगी। इसका पूर्ण रहस्य संत सतपुरुषों की शरण में ही मिल सकता है। प्रवचन 36। प्रकृति सब किसी को सूर्य की रोशनी, वायु, चंद्रमा की रोशनी एवं शीतलता, जल, अग्नि आदि पदार्थ समान भाव से देती है। उसके लिए ऊंच नीच, अमीर और गरीब, किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं है। वह सबके लिए समान रूप से अपना कार्य कर रहे हैं, चाहे कोई उनसे अधिक लाभ ले अथवा कम। ये सब मनुष्य ही अपनी प्रवृत्ति पर निर्भर है। इसी प्रकार सत्य नाम जो पूर्ण सद्गुरु से ही प्राप्त किया जाता है, ये सत्य नाम सबके लिए समान प्रकाश देने वाला है। गुरुवाणी में भी आया है, बीज मंत्र सर्ब को ज्ञानु, चहु वर नाम ही जपे को नामु, जो जो जपे तिसकी गति होई, साध संग पावे जन कोई। सत्पुरुषों के बताए हुए सत्य नाम को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र चारों वर्णों में से जो प्राणी भी श्रद्धा विश्वास से जपता है, वही आवागमन के चक्र से विमुक्त हो जाता है। यहाँ ऊंच नीच, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं। ये तो अपनी अपनी कमाई पर निर्भर है। जो जितनी अधिक कमाई करेगा, उतना ही अधिक आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ता जाएगा। अतएव इस सत्य नाम को सत्पुरुषों को प्राप्त कर इसकी कमाई करना ही मानव जीवन का ध्येय है। प्रवचन 37। दोनों भवों के ऊपर मस्तक में त्रिकुटी का स्थान है। ये त्रिकुटी आकृति में लंका के तुल्य त्रिकोण की सी बनी हुई है। लंका में पहुंचने वाले अकेले पवन पुत्र श्री हनुमान जी थे। हनुमान जी का अर्थ है मान का हनन करना, अर्थात मान का हनन करके अजपा जाप का साधक ही अपने इष्ट देव भगवान में ध्यान में अपने आप को संकल्प विकल्पों से शून्य करके त्रिकुटी देश में पहुंचा सकता है। वहां पर ही सुरती रूपी सीता को भगवान राम का संदेश देगा और फिर अहंकार रूपी रावण के हाथों में जकड़ी हुई सीता को उसके पंजे से मुक्त कराकर राम से मिला सकता है। इस रहस्य का विस्तार संत सतगुरु जी ही समझा सकते हैं। साधारण एक दिन प्रवचनों में फरमाया, साधारणता देखा जाता है कि दुनिया के कामों में सब अपने अपने काम ही समझ रखते हैं। जैसे एक दुकानदार अपने सामान को खरीदने और बेचने की समझ रखता है, परंतु वही दुकानदार न्यायालय के नियमों को नहीं जान सकता। इसी तरह से एक वकील जो है न्यायालय के कामों को अच्छे से कर सकता है, वह दुकानदारी के काम को नहीं जान सकता। इसी प्रकार से सब अपने अपने कामों से निपुण होते हैं। दुनियादार या संसारी लोग दुनिया के कामों में भले निपुण हो अथवा समझदार हो, परंतु परमार्थ के कामों में उनकी समझ काम नहीं करती। परमार्थ के कार्यों से संत महात्मा ही अच्छी तरह परिचित होते हैं। कोई भी मनुष्य मन एवं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि से स्वयं नहीं छूट सकता। धन एकत्र करना, विद्या पढ़ना या किसी प्रकार का गुण ग्रहण करना, ये सब बुद्धि की सीमा में सीमित है। बुद्धि से संसार के सब काम किए जा सकते हैं, परंतु काम क्रोध लोभ मोह मन या मन के विकारों को समझना बुद्धि का काम नहीं। आध्यात्मिक विद्या बुद्धि से परे की विद्या है, और बुद्धि जो मन एवं इंद्रियों के अधीन हो चुकी है तथा इंद्रिय मन के ने इसको क्षण भगुर सुखों में उलझा रखा है, वह आत्मिक विद्या को कैसे समझ सकती है। बुद्धि से धन तो बढ़ाया जा सकता है, परिवार के मोह में फंसाया जा सकता है, लेकिन इनसे दूर नहीं किया जा सकता। इस बात को समझना साधारण जीवों की बुद्धि से परे है। अध्यात्म विद्या तो बोध सद्गुरु से ही मिल सकता है। बिना सद्गुरु के जीव ब्रह्म विद्या को नहीं जान सकता। ब्रह्म विद्या या अध्यात्मक विद्या को समझने से ही जीव आत्मा के देश में पहुंच सकता है। ये काम जब भी होगा सतगुरु की कृपा से ही होगा। संत सतगुरु ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन और विषय विकारों से छूटने का उपाय बताकर परमार्थ पर चलने की इस जीव को आदेश देते हैं। जो जीव सत सतगुरु के बताए हुए नाम उपदेश की कमाई करते हैं, वह सरलता से इन मानसिक विकारों से छूटकर आत्मा के देश में पहुंच जाते हैं। प्रवचन 39। यदि कोई मनुष्य यात्रा के समय अपने निवास स्थान से दूर ये नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मैंने कहाँ जाना है, तो उसे सब बुद्धिहीन ही समझेंगे। इसी तरह इस जीव को भी स्वयं का कुछ पता नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस उद्देश्य से आया हूँ और मैंने अंत में कहाँ जाना है। संत महापुरुषों की दृष्टि में ये जीव की अज्ञानता है। शास्त्रों में इस जीव को ईश्वर का अंश कहा गया है। वे ईश्वर सब में व्यापक है। तुलसीदास जी ने अपने वचनों में फरमाया है कि ईश्वर पार ब्रह्म अविनाशी संत और चेतन है तथा वह आनंद का भंडार है। सब जगह व्यापक कण कण में समाया हुआ है। ऐसे विकार रहित प्रभु जीव के हृदय में रहते हुए भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम की यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य और प्रभाव को जानकर श्रद्धा पूर्वक यत्न साधन करने से ही हृदय मंदिर में प्रभु का दीदार होता है। जिस प्रकार रतन को प्राप्त करने के लिए पारखू से ही उसके मूल्य की जानकारी होती है, अब सोचना यही है कि जीव ईश्वर का अंश होने पर भी दीन दुखी क्यों है। इसका कारण यही है कि जीव को स्वयं को भी ज्ञान नहीं कि वह ईश्वर का अंश है। अपनी वास्तविकता को भूलकर वह दुखी और अशांत रहने लगा है। जीव ने स्वयं को माया रूप मान लिया है और अपने आप को इससे नहीं छुड़वा सकता। जीव माया से उस समय छूट सकता है जब सतगुरु से नाम की प्राप्ति कर उसकी कमाई करें। सतगुरु की शरण में जाने पर ही संसार की वास्तविकता का ज्ञान होता है। सतगुरु ही जीव को माया के बंधन से छुड़वाते हैं। जैसे आग का अंगारा अग्नि से दूर करने पर कोयला बन जाता है, यदि उस कोयले को आग के बीच रख दिया जाए तो वही कोयला अंगारा रूप बनकर चमकने लगेगा। इसी तरह से ये जीव भी मालिक से अलग होकर माया में उलझ कर कोयला रूप बन गया है। सतगुरु के उपदेश से, ज्ञान की अग्नि से ये जीव प्रकाश रूप बनकर मालिक के साथ मिल सकता है जहाँ से ये अलग हुआ है, परंतु जीव इस काम को स्वयं नहीं कर सकता। सतगुरु ही जीव को निज स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, तब इस जीव को वास्तविकता का पता लगता है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, मुझे ईश्वर के साथ मिलना है। ईश्वर के साथ मिलने पर ही जीव सुख एवं आनंद का अनुभव करता है। इसलिए सतगुरु से नाम उपदेश की प्राप्ति करके जीव को मालिक के साथ मिलने का प्रयत्न करना चाहिए। जीव को सतगुरु द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने की अत्यंत आवश्यकता है। प्रवचन 40। सत्संग की महिमा वेदों तथा शास्त्रों ने अध्यात्मिक बताई है, क्योंकि सत्संग से ही मनुष्य के विचारों में परिवर्तन होता है। इस मनुष्य को आदि व्याधि अपाधि तीन प्रकार के रोग लगे हुए हैं, जिसमें जीव कई जन्मों से दुखी है। सत्संग के श्रवण मनन एवं निंद्यासन से ही इसके मानसिक रोग दूर हो सकते हैं। सत्संग श्रवण कर हृदय में धारण करना उत्तम अवस्था है। यदि थोड़ा थोड़ा भी मन पर प्रभाव पड़ता रहे तो काफी लाभ प्राप्त हो सकता है। सत्संग को सत्पुरुषों के ने इसलिए ही अधिक महत्व दिया है कि इसके प्रभाव से वाल्मीकि जैसे भूले भटके जीव मनुष्य ने भी ऋषि पद को प्राप्त किया। सब शास्त्रों में सत्संग का उत्तम श्रेष्ठ कहा गया है, परंतु आवश्यकता मानने की है, उस पर चलने की है। केवल सुनकर छोड़ देने से मनन की चित्र विद्या नहीं बदल सकती। सत्संग सुनने एवं अमल करने से ही जीव के संस्कार बनते हैं। वे संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाते। एक जन्म में संचित किए हुए संस्कार ही दूसरे जन्म में उच्च आदर्श तक पहुंचने में सहायता देते हैं। इस मनुष्य में ध्रुव प्रह्लाद के प्रमाण साक्षी हैं। बाल्यावस्था में ही उनके रुचि ईश्वर की ओर थी। ये संस्कार पूर्व जन्म में सत्संग सुनने एवं उनका मनन करने पर ही निर्भर है। शुभ संस्कारों के एकत्र करने का नाम ही क्रियामान कर्म है। संत महापुरुषों ने प्रबाद कि संचित कर्मों की अपेक्षा क्रियामान कर्मों को श्रेष्ठ माना है। इन क्रियामान कर्मों से मनुष्य अपनी जीवन धारा बदल सकता है। सत्संग का मनन करने से क्रियामान कर्म एकत्रित होते हैं। जितनी सत्संग में अधिक रुचि होगी, उतनी ही मन की वृत्तियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। सत्संग को महापुरुषों ने मन का दर्पण कहा है। मन में कौन से विचार भरे हुए हैं, मन की रुचि कौन से रस भोगों में है, ये सब कुछ सत्संग से ही जाना जा सकता है। मन की अवस्था का ज्ञान होने पर ही सब साधन किए जा सकते हैं। भजन अभ्यास, वैराग्य, प्रेम, सद्गुरु की सेवा, कर्म उपासना आदि ये सब मन की मलिनताओं को दूर करने के साधन हैं, जो सद्गुरु की संगति से ही प्राप्त हो सकते हैं। जब सत्संग से मन की अवस्था का बोध हो जाता है, तब हर प्रकार के साधनों को मन एवं शरीर के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए सत्संग सुनना एवं मनन करना अति आवश्यक है। प्रवचन 41। वास्तविक धर्म वही है जिस धर्म से वैराग्य उत्पन्न हो। जिन धर्म कर्मों के करने पर अहंता उत्पन्न हो, उसे धर्म नहीं कहा जा सकता। वैराग्य से योग तथा योग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि वेदों तथा ग्रंथों ने भी बतलाया कि ज्ञान मोक्ष को देने वाला है, परंतु ज्ञान का मार्ग सरल नहीं। इससे सरल साधन है भक्ति, जिससे मालिक शीघ्र प्रसन्न होते हैं। श्री रामचंद्र जी स्वयं निज मुख से फरमाते हैं कि मुझे भक्ति प्रिय है और वही भक्तों को सुख देने वाली है। अब यो सोचना ये है कि भक्ति कैसे प्राप्त होती है। भक्ति सतगुरु की सेवा, सतगुरु के चरणों में दृढ़ विश्वास तथा सतपुरुषों की पावन संगति से प्राप्त होती है। जब तक पूर्ण संत महापुरुषों की संति प्राप्त ना हो, तब तक इन सब गुणों अर्थात सेवा, त्याग, वैराग्य एवं भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भक्ति का दूसरा नाम धर्म ही है। इन सब गुणों को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की शरण लेना तथा प्रेम विभोर होकर श्रद्धा सहित उनकी सेवा करना अति आवश्यक है। एक दिन प्रवचनों में फरमाया कि आत्मिक सुख अर्थात ब्रह्मांड देश के अमर सुख खांड में समान है और शारीरिक भोगेश्वर अर्थात पिंड देश के रस रेत के समान है। मनुष्य की सुरती पिंड देश के रसों में फंसकर ब्रह्मांड के ऊपर अमर सुखों को भुला चुकी है। सुरती को पिंड देश अर्थात शारीरिक सुख ऐश्वर्य से मुक्त कराकर ब्रह्मांड देश में पहुंचाना ही आत्मा का परमात्मा से मिलाप है। परम संत श्री कबीर साहब जी भी समझाते हैं कि जैसे चींटी ही चीनी और रेत को अलग कर सकती है, हाथी नहीं, ऐसे ही जब हम सुरती स्थूल बनकर शारीरिक सुख ऐश्वर्य में फंसी रहेगी, तब तक आवागमन से ऊपर नहीं उठा जा सकता। आत्मा सूक्ष्म सत्ता है, इसलिए सुरती को चीटी बनाने से ही ब्रह्मांड का मार्ग ज्ञात होगा। ब्रह्मांड में पहुंचकर ही आत्मा का बोध हो सकेगा। सुरती को सूक्ष्म बनाने का साधन पूर्ण संत सतगुरु ही देते हैं। वही सुरत शब्द योग का साधन बताते हैं। आत्मा तथा शरीर का अलग अलग रहस्य इसी साधन से ज्ञात होता है, जिससे जीव 84 लाख योनियों से छुटकारा पा सकेगा। वह आवश्यक है कि मानव जन्म को पाकर जीव संत महापुरुषों की संति तथा उनकी चरण शरण ग्रहण कर आवागमन से छुटकारा पाने का प्रयत्न करे तथा सुरती को आत्मा से मिलाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।